नमः सिद्धेभ्यः मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणेश मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानां जैनं जयतु शासनं अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की
संसारिणः सर्वे चतुस्संज्ञा द्वारा तुला संसारी प्राणी प्राय जितने भी हैं वे चार संज्ञाओं की ज्वरों से पीड़ित है। ये क्या कहना चाहिए, अनेक प्रकार के रोग होते हैं किंतु जिस समय ज्वर आता है वह पहलवान भी पसीन जाता है। जिस समय ज्वर आता है वह विद्वान भी लेखक भी और चिंतक भी अपने दिमाग को खो देता है। ये ज्वर का लक्षण ज्वर बुद्धि को सही से काम करने से रोक देता है। संसारी प्राणी के पास एक प्रकार के ज्वर नहीं किंतु चार प्रकार के ज्वर और इससे वह पीड़ित अपना आत्मकल्याण करना चाहता है और विश्व में शांति स्थापित करने का वह एक स्वप्न देखता है। लगता है वह भूल रहा है। जिस व्यक्ति को बुखार चढ़ा है वह व्यक्ति दूसरे की सुख और शांति के बारे में सोच ले बहुत कम बात गले में उतरती है। हाँ, शारीरिक ज्वर भले हो किंतु मानसिक ज्वर से जो ग्रसित नहीं है वह व्यक्ति कथन से अपने कदम आगे बढ़ा सकता है। चतुस्संज्ञा ज्वरातुरा ये सारे सारे मानसिक ज्वर हैं, शारीरिक ज्वर नहीं। शारीरिक ज्वर के साथ भी वह मुक्ति का सोपान प्रारंभ करते हुए अंतिम सोपान को भी पार करके विराजमान हो सकता है, उसे स्थाय लेंगे। किंतु मानसिक ज्वर के साथ जो व्यक्ति पीड़ित है वह व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर एक कदम भी नहीं रख सकता। यह जैन सिद्धांत इस ज्वर से दूर करने के लिए उस रोगी की चिकित्सा उन महान ज्वर से रहित डॉक्टरों के सानिध्य में प्रारंभ हुआ। चार संज्ञाएं आहार लेने की इच्छा। आहार का करना संज्ञा नहीं है। जैनाचार्यों ने जो कोई भी डेफिनेशन दिए हैं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आहार करना संज्ञा नहीं है किंतु आहार की इच्छा करना यह आहार संज्ञा है। और उस आर्यजन से पीड़ित यदि कोई भी भावी तीर्थंकर भी क्यों ना हो उसको उस संज्ञा के कारण प्रमादी कहा है, प्रमत्त कहा है। ये जैनाचार्यों का एक ऐसा व्यंगात्मक उपाधि है उस व्यक्ति के लिए जिसको पागल कह सकते हैं। लोक रूढ़ी के अनुसार उसे पागल कहा जाता। प्रमत्त का अर्थ ही होता है कि पागल होता है। उन्मत्त, प्रमत्त और आदि आदि जो शब्द हैं, ये लोक रूढ़ी के अनुसार कुछ अर्थ अले को सिद्धांत की दृष्टि से वह व्यक्ति पागल माना जाता है। और अहर की इच्छा करने वाला पागल की पूंजी में तीर्थन कर भी क्यों ना हो, आए बिना रह नहीं सकता। और आप समझो कि पागल कभी भी विश्व का कल्याण कर सकता है। इसलिए जो व्यक्ति रोग से पीड़ित है, उस रोग को दूर करने के लिए चेष्टा कर रहा हो, वह व्यक्ति अपने लिए कर ले पहले, विश्व के बारे में कभी नहीं सोच सकता। हाँ, जिनके पास आहार लेने की इच्छा नहीं है, उस समय वह आहार नहीं करता हो तो भी वह आहार संज्ञा नहीं मानी जाती, क्योंकि आहार संज्ञा वाला व्यक्ति हमेशा खाता ही चला जाता। किंतु दूसरे खाते को वह देखना नहीं चाहता। दूसरे खाते को मतलब मेरा अतीत क्या है, मेरा भविष्य क्या है, अड़ोस क्या है, पड़ोस क्या है, सब गोल वो खाने में लगा हुआ रहता। और जो व्यक्ति अपना अतीत, अपने भविष्य और दूसरे का भी भविष्य के बारे में सोचने लग जाता है, भले भोजन कर रहा है लेकिन सोच रहा है कल्याण के बारे में, तो संज्ञा का अर्थ इच्छा है, यह पागलपन है। ऐसी चार संज्ञाएं हैं। एक भय संज्ञा है। शुरुआत करेंगे हमें सिद्धांत में कि भय संज्ञा वाला व्यक्ति कभी भीतराजी नहीं बन सकता। और भय का स्रोत क्या है तो कहा जाता है, भय का स्रोत एक प्रकार से परिग्रह माना जाता है। जिनके पास परिग्रह है वही भय खाता है, वो भय ही खाता है, वो भी नहीं खाता। अब जो रोटी नहीं खाता है वह भाग्य है, उसको दिखता है। स्वयं जो भय खा रहा है वो भाग्य में आने के उपरांत भय के अलावा क्या खा सकता, उसे यह दिया जाता है ये क्यों हुआ तुम्हें, ये रोग क्यों हुआ है तुमको, रोग की जड़ स्रोत उद्गम उसका तल में क्या है, गहराई में क्या है। लहर उठती है सरोवर में, कहीं न कहीं स्पंदन कराने वाला उसमें डूब गया है, वह गिर गया है, यह निश्चित है। उसके बिना यह तरंग आ नहीं सकती, उठ ही नहीं सकती। तरंग का अर्थ हल चुकी और सब जगह हलचलियां, मानसिक तरंग, बौद्धिक तरंग, वास्तविक तरंग। आप अभी सुन रहे हैं वचन, लेकिन यदि और कनेक्शन जोड़ दिया जाए तो आप एक शब्द को नहीं सुन पाएंगे, यहां पर कितनी तरंगे हैं पता नहीं। वो सारे सारे स्टेशन चालू हो जाए तो आप एक को नहीं पकड़ पाएंगे। ये तरंग के हिसाब किताब लोक में चारों तरफ तरंगायित है, ये लोग अनेक प्रकार के तरंग, किसी की परिग्रह की तरंग है तो उसकी दूरी कहां से कहां तक है, उसका भी करंट एक अलग है स्टेशन, उसको पकड़ना चाहे तो बहुत गंभीरता से सोचना पड़ता है कि इस तरंग को वहां से उस माइंड से कैसे समाप्त किया जाए। आज यहां पर बैठा है और विश्व के कोने में और कोई घटना घट रही है, वह मेरे पास आ जाए, ये भी तरंग है और वह यह तरंग जाकर के वहां तक टकरा सकती है, उसका परिणाम उस व्यक्ति को हो सकता है, ये सब तरंगे हैं। तो परिग्रह की एक तरंग जिसके कारण भय की तरंग उठती रहती है, और तरंग निस्तरंग जब तक नहीं हो तब तक मानस सरोवर में कभी भी आत्मानुभूति शुद्धात्म तत्व या पर के दुख को दूर करने का भाव जागृत हो नहीं सकता। भयवान व्यक्ति हमेशा हमेशा अपने भय को मुक्त करने के लिए, अपनी रक्षा के लिए हमेशा सोचता रहता है, दूसरा किस समस्या में है वह कभी भी नहीं सोच सकता। तो वह भय से क्या दूसरी आहार भय और मैं क्यों, यह भी एक ऐसा पागलपन है, यह भी एक ऐसा पागलपन है। यह सिद्धांत घोषित है, वैकल्पों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह क्या वस्तु है। अपने पास छह इंद्रियां, कितनी इंद्रियां, क्यों भैया हंसने का कोई कारण तो था नहीं, संख्या में गड़बड़ी हो गई क्या, उसी गड़बड़ी को तो कहना है मुझे। तो सभी लोग पांच पांच ऐसी आवाज तो आ गई, छह की आवाज तो दबती हुई भी नहीं आई, क्योंकि हंसने के रूप में तो आ गए, क्योंकि दोबारा पूछने से कई लोगों को शक होता है, यह नहीं है तो ये नहीं है तो ये, दो ही तो है बैठ। तो छह इंद्रियां इसलिए कह रहा हूं, ये पांच इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला एक और वो कहां रहता है, बाहर देखने में नहीं होता, उसको आचार्यों ने इंद्री न कह करके अनिंद्री कहा, उसको बाहर न कह करके अंतरंग कहा, अंतःकरण कहा, करण मैंने इंद्री होती और अंतः मैंने भीतर, भीतर एक इंद्रिय होती जिसके माध्यम से पांचों बाहर से या नियंत्रण में रहते या अपने अपने कामों में, जब तक उस अंतःकरण का कि ऑर्डर नहीं होता तब तक बाहरी कोई भी इंद्रियां अपने विषयों की ओर जा नहीं सकते। ऐसा बड़ा बड़ा स्टेशन है भीतर, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि संतों ने इस बात को पकड़ ली है, उसको अंतकरण कहा है और उसको अनंग भी कहा है, अंतरंग भी कहा है, अनिंद्री भी कहा है, नॉन इंद्री भी कहा, ये मायना रखता है। ये शब्द को अर्थ के साथ यदि जोड़ देते हैं तो हमारी बुद्धि बहुत और विस्तृत होने लग जाती है और हमारा प्रयास इन पांच इंद्रियों की ओर न जाकर के उसी ओर जाना आवश्यक समझ लेता है, क्योंकि वो ही पहले नियंता है। उसे नपुंसक घोषित किया है, सुन रहे हो क्या नहीं, मन वाले ने आप और मन को नपुंसक कहा है, क्यों, वह नियत विषय नहीं और नियत क्षेत्र में रहने वाला नहीं, किसी को वह विषय नहीं बना सकता डायरेक्ट, जिसने विषय बना लिया है उसको नियोजित तो कर सकता है लेकिन अपने तरफ से कोई वह विषय भोगता नहीं। मन का विषय रूप नहीं है और है भी, रूप को डायरेक्ट पकड़ता है आंख, ये आंख जो है पकड़ लेगी रूप को, फिर इसके उपरांत यह रूप बहुत अच्छा है, यह मीमांसा, यह समीक्षा, यह परीक्षा, यह निर्णय, यह स्वयं आंख कुछ नहीं, आंख अपने आप में अंधी है, निर्णय के क्षेत्र में उसका कोई भी पहल नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं है। और यदि मन हस्तक्षेप नहीं करता तो आप वीतरागी हैं, ये निश्चित बात समझ लीजिए। आप लेकिन आपके लिए कह रहा हूं, मन जैसा दूसरा और भी काम करने वाला है जो एक इंद्रिया लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक करता है, उसका भी प्रकारांतर से एक प्रकार से यही काम है जो मन के द्वारा आप लोग कर रहे हैं। अब रस को चखना चाहे तो मन नहीं चखता, इसलिए मन के लड्डू अलग होते हैं, पेट के लड्डू खाने के लड्डू अलग हुआ करते हैं। आपको लड्डू खाना है तो खा लीजिए, लेकिन मन का लड्डू ऐसा खाया जाता, कैसा खाया जाता आप बताओ, मुंह चबा करके नहीं बता सकते, दांतों को कटकटा करके नहीं बता सकते, वह मन के लड्डू तो मन ही जानता है। उसका रूप कितना रहता है, उसका आकार कितना बड़ा रहता है, मन के लड्डू के आकार तो बहुत बड़े रहते हैं, वो फिर भी समझ नहीं सकता, लेकिन कोशिश कराया जाता है, प्रयास किया जाता है। यह मन न रस को चखता डायरेक्ट, न रूप को देखता है डायरेक्ट, न स्पर्श को जाता है और न गंध को, और न ही कर्मेंद्र के विषय शब्द को। शब्द एक प्रकार से श्रोत्रेंद्र का विषय है, मन का विषय नहीं। बाद में शब्द को कभी भी मन सुन नहीं सकता। शब्द का जो अर्थ है, शब्द का जो मायना है, उसको वह जानता है। शब्द को तो श्रोत्रेंद्र जानता है, आवाज को सुनने की क्षमता मन के पास नहीं। मन के पास आखिर कुछ क्षमता तो है, कुछ भी क्षमता नहीं। एक केवल या तो भविष्य को या तो अतीत को अपना विषय बनाता है, जिसमें पांच रूप आदि भी नहीं रहते हैं, और केवल प्लानिंग डन इज डन, बस वर्तमान नहीं रहता। जब वर्तमान में काम करने लग जाते हैं तो भी प्लानिंग के साथ ही हम करने लग जाते हैं, या तो अतीत को आदर्श बना करके कर लेते हैं, नकल के साथ कर लेते हैं, और मन के द्वारा कभी भी आपको संवेदन नहीं होता पर द्रव्य का। यह आस्था का विषय है, तब संवेदन प्रारंभ होता है, मन के द्वारा कभी भी नहीं होता। यह सहानुभूति आस्था के माध्यम से होती है, इसलिए वह तरंग आज विज्ञान ने तैयार नहीं किया, उस तरंग को पकड़ने का प्रयास नहीं किया, जिसको बोलते हैं संप्रेषण। तो मन के द्वारा ही हुआ करता है, उपयोग के द्वारा हुआ करता है, और वह संज्ञातीत हुआ करता है। संज्ञा में ग्रसित कोई उपयोग तीन काल में किसी कल्याण के बारे में विचार विमर्श नहीं कर सकता। यह बहुत गहरा एक रहस्य है कि इसके अध्ययन के लिए हमारे मन को बहुत क्लियर करना आवश्यक है। जो चार संज्ञाओं से ग्रस्त मन है, वह तीन काल में कभी भी विश्व का कल्याण सोच नहीं सकता, अपना कल्याण भी वह नहीं कर सकता। चतुर्संज्ञा जरा ग्राहा सर्वे प्राणी संसार, सभी संसारी प्राणी चार संज्ञाओं से ज्वरातुर है। इनके ज्वर को दूर करने का कौन सा उपाय है? तो आचार्य कहते कि स्वयं हम कौन है यह समझिए। तो भय संज्ञा क्यों होती है, भय क्यों होती है? तो परिग्रह के कारण भय हुआ करता है। एक सज्जन आए थे, वह लगभग 15 या 20 वर्ष पूर्व की बात है। वह नैनागिरी की चर्चा है, वह जल मंदिर की चर्चा है, और कुछ लोग आए। चर्चा के दौरान कहा कि महाराज, ये हमारे परिवार के ऊपर, इनके ऊपर, उनके ऊपर जब कभी भी सुनते हैं तो कई प्रकार के ग्रह हमें तकलीफ देते हैं, परेशानी बढ़ा देते हैं। जैन सिद्धांत में इन ग्रहों के बारे में क्या कहा गया है? क्या इन ग्रहों का प्रभाव आप लोगों के ऊपर भी है क्या? मतलब हमारे लिए उनका संकेत। धीरे से हमने उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। सुन लीजिए, ग्रह क्या वस्तु है और ग्रह का चक्रण क्या वस्तु है? तो थाई द्वीप में सब जगह ग्रहों का गमन तो रहता ही रहता, नित्या गया हा, ये कहा नित्य गतिमान हुआ करते हैं सारे सारे ग्रह। और धरती पर रहने वाले व्यक्ति के ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है, पड़ता। आप मानते हैं? हाँ, क्यों नहीं मानते? मानते हैं। तो धरती पर आप भी हैं? हाँ हाँ, मेरा नंबर बाद में आएगा, और कब आएगा हम बता देते हैं, आ सकता है, लेकिन पहले वहां से प्रकाश कर रहे। जो घर गृहस्थी में रहते हैं उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव है, घर गृहस्थी में रहते हैं उनके ऊपर। तो आप तो घर में रहते नहीं, ये ठीक, आप रहते हैं ना, हम रहते हैं, इसलिए तो हम पूछ रहे हैं कि ये कैसे टाला जाए, कब टाला जा सकता है? जब आप चाहो उस समय टाला जा सकता है। ऐसी भी बात है। हाँ, कौन सी दवाई इसके लिए, कौन सा उपाय, यही परिग्रह को सीमित कर दीजिए तल जाएगा, परिग्रह को सीमित कर दीजिए तल जाएगा। वह ग्रह कह नहीं सकेगा कि क्यों ये कर दिया, और ग्रह वहीं पर आ जाएगा लेकिन आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकेगा। लेकिन मन से, वचन से, काय से उसको क्लासिफिकेशन करना होगा। ऐसा नहीं कि हमारे नाम से 10 लाख है और उसको घर में ही रखना है और घर में 10 सदस्य हैं, 1-1 लाख कर दो, विभाजन भी हो गया, लिमिटेशन भी हो गया और ग्रहों का। ऐसा नहीं, आपकी संज्ञा अभी भी अपने ही घर में यह संपदा बनी रहे। अब मान लीजिए 1-1 सदस्य का 5-5 लाख यदि कर देते हैं तो फिर हो गया 10-5-50। मतलब आप अभी 10 लाख के आशा में होते हुए 50 लाख की संज्ञा आपके पास विद्यमान है, इसलिए उन ग्रहों का विशेष रूप से आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ये संज्ञा इच्छा के अनुसार उन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए परिग्रह यह इच्छा का नाम है, वस्तु का नाम नहीं। परिग्रह इच्छा का नाम है। और परिग्रह को जीनाचार्य ने कहा मूर्छा, मतलब हम होश आवास में रहना चाहते हैं और मूर्छा के सेवन करते चले जाते हैं और हमारी बुद्धि ठिकाने रह जाती, कैसे संभव है। तो महाराज, तो आप लोगों के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं है भैया, हमारे पास यदि परिग्रह होता तो संभव था। तो ये हुआ कि परिग्रहियों के बीच में रहते हुए भी हम मूर्छा को प्राप्त नहीं करते, इसलिए वो सारे के सारे ग्रह हमारे ऊपर होते हुए भी कहते हैं सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम। बिल्कुल, वह शनि सबसे अंतम अंतिम है, सदिश चराहा से सबसे अंतिम ग्रह माना जाता है, और यहां पर आप धरती पर है, वह यदि पास आ जाए तो क्या होगा आप लोगों का। लेकिन हमारे पास वह आ नहीं सकता। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज, आपके समय को देखते हुए शनि ग्रह पास लगता है, नहीं आ सकता, शनि ग्रह को शनि ग्रह लग जाएगा। इसलिए परिग्रह ही नहीं, मूर्छा है ही नहीं। यदि ऐसा हो जाए तो वीतरागी के ऊपर भी झपट होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। कभी ये सोचा महाराज, हमारा घर ही शनि ग्रह के चपेट में चल रहा है और यह सुनते हैं 7.5 वर्ष का कार्यक्रम, 7.5 वर्ष का कार्यक्रम है, क्या किया जाए। आपके घर में जो लड़का है उसके लिए शनि ग्रह नहीं लगा, आपके घर में और कोई भी सदस्य को नहीं लगा, क्योंकि मुख्य रूप से जो स्वामी बना हुआ है उसी के दिमाग की उपज है। अभी तक सोचने में आया है, ज्योतिष विदों ने कहीं भी घोषित नहीं किया, अभी तक सोचने में आया है, ज्योतिष विदों ने कहीं भी घोषित नहीं किया है कि किसी के घर में रहने वाली गाय के ऊपर शनि ग्रह का प्रभाव बना हो, बैल के ऊपर प्रभाव पड़ा हो। संभव है, पड़ सकता है, लेकिन जैसे आप लोगों के ऊपर पड़ता है, हमारे विचार से उन लोगों के ऊपर नहीं पड़ता। तो दुखी कौन हो गए, आप लोग हो गए, और आपके सदस्य होते हुए भी वो दुखी नहीं हुए। दुख का अर्थ ही है पीड़ा, और पीड़ा किसके लिए, जिसके लिए हो रहा उसी से संबंधित है। यह भय, यह महत्वपूर्ण, और यह परिग्रह, और यह ये सब मानसिकता है, संज्ञा, ज्ञान संबंधी चीजें हैं, मन संबंधी ये सारी चीजें हैं, बौद्धिक उपज है ये शारीरिक नहीं। संज्ञा मात्र शारीरिक नहीं, एकमात्र आत्मा की विकृति मानना चाहिए, और इस विकृति के साथ उनके लिए कहा यह प्रमत है।
ये बावला है, ये पागल है। इसलिए अब उस ओर में आपको ले जाना चाहता हूं और आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि भूमिका तो बहुत अच्छी बन गई है। जहां रहते वहीं पर आपके पास धर्म है, और जहां पर आप रहते हैं वहीं पर अधर्म है। जहां पाप है वहीं पर पुण्य भी है, धर्म भी है। जहां मोक्ष है वहीं पर संसार भी है, और जहां पर नरक है वहीं पर स्वर्ग भी है, यह निश्चित बात है। जहां पर गंदा नाला बह रहा है वहीं पर एक झरना भी फूट रहा है जो शीतलता प्रदान करता है। नाशिका को तृप्त करने की क्षमता उसी के पास विद्यमान है, केवल भावों का खेल। जैन दर्शन ने जो भावों की समीक्षा जिस डीपनेस के साथ डेप्थ में जाकर के की है, अन्यत्र उसकी उपलब्धि नहीं होती। यदि होती है तो वह निश्चित रूप से वितरागता के साथ संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं। केवल यह जाति पंथ या क्षेत्र इत्यादि की बात ही नहीं है, यह तो बाहर की व्यवस्था है। इन व्यवस्थाओं में आप उलझ जाओ तो बात अलग है। उद्देश्य के प्रति जागृति हमेशा हमेशा रहना चाहिए। एक व्यक्ति वह जो मुंह तो उसका खुला है, आंखें उसकी बंद हैं और कोई कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन बात ऐसी है कि वह शांति विश्राम में लीन है, अथवा यूं कहो कि उस ओर उसका ध्यान नहीं। एक वहीं पर दूसरा व्यक्ति है जिसके पास मुंह बहुत छोटा है क्या नहीं, इसके लिए भी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ सकती है। बहुत छोटा व्यक्तित्व, बहुत छोटा है, लेकिन आपको उसकी बाहरी भीतरी विराटता के बारे में ध्यान आएगा तो आप अचंभे पड़ जाएंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे, और यह भी कहीं हो सकता है क्या। हाँ, हो सकता है। जिसके पास हाथ नहीं, जिसके पास पैर नहीं, जिसके पास और कुछ उड़ान नहीं, और जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन जिसके पास वह है जो बाहर वाला जा सकता है, उससे भी आगे बढ़ने की उसके पास क्षमता है। और वह सोच रहा है जिसके पास कोई सामग्री साधन नहीं है, यदि इसकी जगह पर मैं होता, इव के साथ बोलता है तो क्या मैं पागल थोड़े कि ऐसा करता। ये को भी नहीं छोड़ता, छोटा बड़ा मध्यम वो ये सब एक साथ साफ करता, लेकिन ये तो पागल ही है, अपने व्यक्तित्व का और अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा। यह निश्चित बात है, शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आप लोगों के पास कौन सी शक्ति है आप जानते हैं, लेकिन शक्ति का सही दिशा में यदि उपयोग होता है तो बहुत बड़ा काम होता है। यदि शक्ति का उपयोग नहीं होता है तो अनर्थ तो नहीं घटित होता, लेकिन वह व्यर्थ जीवन चला जाता है। यदि शक्ति का दुरुपयोग हो जाता है तो अनर्थ हो जाता है। शक्ति का सदुपयोग करना अर्थ है, परमार्थ है। शक्ति का उपयोग करना है जीवन व्यर्थ है। किंतु आज जैसे विज्ञान जो शक्ति का उपयोग कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, यह महान अनर्थ की जड़ है, वहां पर घटित हो रहा था। एक व्यक्ति व्यर्थ में वह समय खो रहा था, उसके पास शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा था। लेकिन एक व्यक्ति के पास शक्ति नहीं थी, लेकिन वह और प्रयोग करना चाहता था, वहां की घटना है। तो दोनों ही, जो व्यक्ति शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा वह, और जिसके पास शक्ति नहीं है वह प्रयोग करना चाहता है पूर्ण रूप में वह, ये दोनों ही एक प्रकार से सप्तम प्रति पहुंच जाते हैं। यह कथा आप लोगों को प्राय ज्ञात होगी, लेकिन ये कथा के माध्यम से जैनाचार्यों ने जो कहने का तात्पर्य सिद्धांत रखा वो बहुत दूर है और बहुत गंभीर है। आज का युग हाथ पैर बहुत कम चला था, लेकिन मन को बहुत चला था। आज यह पैरों से कम जाता है
इसकी ईरापत की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके पैरों से कभी जीव जंतु मर ही नहीं सकते क्योंकि ये चलता ही नहीं, लेकिन इसका माइंड इतना चलता है, इतना चलता है, उसके पास हजार हजार व्यक्ति के पैर भी लगा दे तो भी आगे बढ़ जाता है। कितना दुर्गुण हो रहा है।
वह एक वह तंदुल मच्छ जिसके पास तंदुल में नहीं चावल के समान वह मच्छ है, लेकिन उसकी इच्छा, उसकी वासना, उसकी महत्वाकांक्षा कितनी है वह बड़ों के पास भी शायद संभव नहीं। और एक वह राघव मच्छ महामच्छ जिसको बोलते हैं, जिसको 1000 योजन की अवगाहना हुई है, उस 1000 योजन को बहुत लंबा चौड़ा हो गया और उसका मुख कितना बड़ा होगा, उसके भीतर बड़े बड़े मछलियां आ रहे जा रहे और वह बहुत समय के उपरांत एक बार अपने मुख को दरवाजा को बंद करता है तो लाखों लाखों छोटे बड़े उसके पेट में रह जाते हैं और उसकी भूख शांत हो जाती है। और तंदुल मच्छ के पास मुंह बहुत छोटा है, लेकिन वह क्या सोच रहा है, दिमाग से सोच रहा है, मैं एक भी मछली नहीं छोड़ता यदि इसके स्थान पर हो जाता, बस दोनों की आयु समाप्त होने के उपरांत दोनों एक साथ साथी बन करके सप्तम पृथ्वी के फीते काट लेते हैं, उद्घाटन हो जाता है। अरे बड़ा पूछता है कि तुम कैसे आ रहे, कैसे गए, मनोमीमांसा तो कम से कम देखना चाहिए, हाथ पैर चलाने से सब होता है क्या, मन के द्वारा भी होता है और वह ऐसा होता है कि वह ट्रेडमार्क है, वह भी एक वज्र की लकीर है, उसके सामने और वो लकीर खींच नहीं सकते, ऐसी लकीर हम मन के द्वारा खींच सकते हैं, ऐसी हिंसा हमारे मन के द्वारा हो सकती है, जिसके पास मन कमजोर है उसके नहीं हो सकती, बैठे बैठे हम कर सकते हैं। और आज का युग इसके बारे में बहुत माहिर हो गया, एक अपने पानी छान करके पीते, फूंक फूंक करके संशोधन करके खाते, एक एक चावल बीन करके और उसमें कंकड़ भी नहीं आ सकते, सारे संशोधन के साथ क्रिया कला के साथ चल रहा, लेकिन मन के माध्यम से हमारी तैयारी, हमारे परिधि इतनी लंबी छोटी है, केंद्र छोटा होता है ज्ञात नहीं होता, लेकिन परिधि की ओर देखने से मालूम पड़ जाता है कि केंद्र में उस व्यास की ओर कितनी क्षमता है, एक बिंदु में ज्ञात नहीं होता, लेकिन उस परिधि की ओर देखो तो ज्ञात होगा यह वर्तुल कितना विस्तृत है। आज के यह मन केंद्र के समान रहते हुए भी विश्व के कोने कोने तक के परिग्रह को अपनी सीमा में लाने का और उसके ऊपर अधिकार जमाने का प्रयास करता है, वो करे या न करे, लेकिन तंदुल मच्छ का जो इतिहास है वह निश्चित रूप से इसके माइंड के माध्यम से घटित हो जाता है। ये तो खाने की बात हो रही थी, ये तो केवल खाने की बात हो रही थी, लेकिन संचय की बात वहां पर भी नहीं थी। बंधुओं ये ध्यान रखना, संचय एक मात्र है तो मुख्य रूप से मानव प्राणी की उपज है, चयन करना और संचय करना यह दिमाग केवल मानव खोपड़ी की बात है, यह खोपड़ी ऐसी है पता नहीं इस खोपड़ी में क्या जादू है, बिल्कुल जो को मैं ठीक कह रहा हूं, मानव के खोपड़ी में जीवित अवस्था में क्या होगे तुम ही जानो, लेकिन जो कोई भी बंगाली जादूगर होते हैं वो मानव की खोपड़ी को भी लेकर के चलते हैं, कोई गैया की खोपड़ी, कोई हाथी की खोपड़ी और कोई बैल की खोपड़ी को लेकर के अपनी जादू सिद्ध नहीं करता, लेकिन मानव की खोपड़ी ऐसी होती है जिसकी आंखें तो ऐसी रहती है कि वह छोटे बच्चे क्या बड़े बड़े बच्चे भी डर जाते हैं, और उसके सामने वह यूं यूं कर देता है तो बस सब लोगों के भैया पहले दे दो पहले दे दो। बड़े बड़े जो सेठ साहूकार होते हैं इस जादू से बहुत डरते हैं, इस जादू से डरते हैं, कहीं ऐसा ना हो, कैसा हो बताओ, कहीं भूत आना चाहे, अरे भूत है ही नहीं उसमें, लेकिन जीवित अवस्था में मानव के खोपड़ी से कोई नहीं डरता। लेकिन जो ही वह स्मशान यात्रा हो जाती है फिर अकेले में यदि भेंट हो, फिर अकेले में भेंट हो जाए तो जादू करने की भी कोई आवश्यकता नहीं, उसका इतनी जो है पावर है कि बस आपको वह आकर्षित कर देता है, कहीं ये मुझे बुला रहा है, ये मुझे खींच रहा है, अब इसके लिए कौन सा रास्ता है ये सोचने लग जाता है। मानव की खोपड़ी, उसके मन में क्या क्या विचार आ सकते हैं, देवों के बस की बात नहीं है, वो मानव की खोपड़ी के सामने देव एकदम सिलेंडर हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ये संज्ञा, भय संज्ञा, डरना और डराना, ये सब मानव के पास कला है, ये कला करता रहता है। दुनिया आज त्रस्त, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि उस तिरिंज के पास, उन मछलियों के पास खाने की इच्छा तो है, लेकिन संचय की इच्छा देखने में नहीं है, कोई वहां पर ट्रेजरी नहीं, और मूर्छा खाने में नहीं होती बंधु, ये ध्यान रखना, रखने में होती है। खाएगा तो कितना खाएगा, दान दाता निमंत्रण आपको दे देते हैं, आप सब परिवार आइए, आप सब परिवार आइए, किंतु ध्यान रखिए केवल परिवार के साथ पेट ले आइए, पेटी नहीं, और पेटी भी नहीं लाइए, आप खाली भी आ जाएं, लेकिन यहां तो आप 10 डाल सकते हैं लेकिन यहां पर एक नहीं, यहां पर का मतलब आप समझ में आ, क्योंकि यह परिग्रह है और यह आहार की पूर्ति, पेट कभी भी पापी नहीं होता है, किंतु संग्रह पाप माना जाता है, इसलिए मुक्ति के मार्ग पर चलने वाले मुनि महाराजों के लिए भी कहा गया है, पेट में आप प्रतिदिन एक बार डाल करके आ सकते हो, इसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन एक दाना ले करके नहीं आ सकते, और ला करके रख करके फिर बाद में काम नहीं ले सकते, इसको आप कहीं भी देख सकते हैं, संचय नहीं कर सकते, दक्षिण में या उत्तर में कहीं भी हो, या आज भी चल रहा होगा, जब मेहनत के साथ कृषि करने वाला किसान अपने 12 महीने तक गन्ना लगा देता है, उसका रखवाल करता है, पुष्ट बना देता है, फिर इसके उपरांत उसकी रक्षा भी करता रहता है, फिर इसके उपरांत जब उस गन्ने से वह गुड़ बनाता है, जब से वह गुड़ बनाना प्रारंभ कर देता है, तब कोई भी आ जाए गन्ना खा ले, कोई भी आ जाए रस पी ले, कोई भी आ जाए अपनी शक्ति के अनुसार वह गुड़ खा ले, खा सकता है, 50 व्यक्ति भी चले जाए तो वह मना नहीं करता, क्योंकि वह संचय का आदि नहीं है, यह बनिया नहीं कर सकता, उसी को ला करके जब वह दुकान खोलता है, जिस दिन दुकान का जो उद्घाटन होता है उस दिन भी वह थोड़े थोड़े बहुत तो दे देता, लेकिन हाथ डाल करके खाने नहीं देता, क्योंकि उसके है ही नहीं, वो ऊपर से जो ले लेता है उसकी उदारता तो संभव है ही नहीं। तो किसान के साथ रहने, किसान भी संचय नहीं करता, जैसे तिरेंच नहीं करता, लेकिन बाद की बात तो पूछो नहीं। आज संचय की दृष्टि से क्या हो रहा आपके सामने, आज भारतीय संस्कृति लुप्त, आप इतिहास लिखने जा रहे हैं, गलती कर रहे हैं। इसलिए गलती कर रहे हैं, ये कौन लिखेगा, ये आज वर्तमान का पृष्ठ उसमें कैसे जुड़ेगा, जुड़ जा तो बिल्कुल पृथक हो जाएगा वो, संस्कृति से उसका कोई मेल नहीं है, न अशी से न मशी से न कृषि से न वाणिज्य से न शिल्प से न विद्या से। छह कर्मों के बारे में आचार्य ने कहीं भी निषेध नहीं किया, जो आज सातवां और कर्म हो गया है, जो संस्कृति को बिल्कुल साफ कर देता है। इन छह कर्मों के साथ नीति न्याय आदि आदि सब लगे हुए हैं, किंतु सातवां जो कर्म आज आ गया उसके साथ कोई नीति नहीं, कोई न्याय नहीं, कोई संस्कृति नहीं, कोई संबंध नहीं, एकमात्र बस उसमें हिंसा के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, भले ही आप सरकार के समर्थन करते हैं, करना भी चाहिए, खाते पीते सब शोध का शुद्ध प्रासुक सब कुछ, लेकिन इनडायरेक्ट आप उसके भी समर्थक बनते चले जा रहे हैं, जो मांस का व्यवसाय जो भारत में चल पड़ा है। इतिहास कोई भी इतिहास देख लो, कोई भी राजा महाराजा हुए उनमें देख लो, कभी भी उन्होंने अपने राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए मांस का निर्यात नहीं किया, जो आज 50 वर्ष से हो रहा है। स्वतंत्रता जब नहीं थी भारत में, उस समय में भी यहां से मांस निर्यात नहीं होता था। मांस खाने की बात अलग है, उसके लिए कुछ भी करते होंगे, लेकिन निर्यात व्यवसाय उन्नति के लिए उपाय नहीं बनाया गया था। लेकिन आज पंचवार्षिक योजना में सर्वप्रथम इसको निर्यात के क्रम में रखा जाता है, इसका आय का लेखा रूपा लिया जाता है, और कितनी मुद्रा आती है आपको आप जाने, लेकिन यह अवश्य है प्रत्येक साल बजट में यह रखा जाता है, मांस निर्यात होगा, कितने टनों में होगा और कितने और आगे की गुंजाइश है, ये लेखा जोखा सुनते हैं पढ़ते हैं तो अच्छा नहीं। मांस का व्यवसाय ठीक नहीं, हिंसा प्रत्येक कर्म में हो सकती है, होती है, उसको कम करने की विधि तो है, लेकिन मांस का ही यदि व्यवसाय होने लग जाए तो कम करने की बात ही नहीं है, वह व्यवसाय ही हो गया। क्या आप मांस के व्यवसाय करना अच्छा समझते हैं? नहीं है तो हमारा कहना, जो कोई भी इस दिशा में कोई भी संस्थाएं काम कर रही है अहिंसा की दिशा में, सर्वप्रथम सरकार के सामने यह विनय अनुनय के साथ कर दे कि यह काम छोड़ देना चाहिए। ये इसलिए छोड़ देना चाहिए कि इसके द्वारा जो पाप हो रहा है वह सातवें नरक में जाने वाले मत से भी ज्यादा, क्योंकि सात्विक रहने वाले जो जनता यहां पर है उस मुद्रा को अपने काम में ले, आपकी उन्नति के लिए वो खर्च किया जा रहा है, मतलब ये हुआ आपकी उन्नति के लिए वो खर्च में आ रहा, तो आप भी उसके पार्टनरशिप हो गए। भले ही आपके दुकान में वहां नहीं हो रहा, लेकिन उसमें हिस्सा तो आपका लग रहा है, तो आप इनडायरेक्ट उसके समर्थक हो गए। यदि समर्थन नहीं करना चाहते हैं तो आपको कह देना चाहिए कि मैं इसमें भागीदार नहीं होना चाहूंगा, लेकिन एक आवाज से कोई बात नहीं होगी, तो ऐसे इकाई के साथ जोड़ करके एक फौज तैयार करनी होगी, जो सरकार के सामने अपनी बात को अच्छी प्रस्तुत कर सके। यह सरकार के हित में नहीं, राष्ट्र के पक्ष में जाता है। राष्ट्र के बारे में आप सोचिए, कौन सी पार्टी क्या कर रही है इससे कोई मतलब नहीं, मांग तो आपकी पूर्ति के लिए वह कर रही है, इसलिए आपको जाना चाहिए कि मुझे यह नहीं चाहिए। होटल में जाते हैं तो मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे इस प्रकार का नहीं चाहिए, फिर आप क्या चाहते हैं, मुझे इस प्रकार का चाहिए, तो इसके लिए कीमत ज्यादा पड़ेगी, कोई बात नहीं। इसी प्रकार आपको यदि राष्ट्र को उन्नत करना है तो सरकार साहब ने कह सकते हैं कि हम इस तरफ से आपको कर सकते हैं, लेकिन इस तरफ से जाने नहीं देंगे। पशु का वध करके दूसरे के मांस की पूर्ति करने के लिए यदि कदम उठाए राष्ट्र, उसमें तो आपको कहना ही चाहिए। कोई भी शोर नहीं देख रहा और नहीं सुन रहा। आज रविवार था, आपके सामने यह विषय रखा, कैसा लगा आपको? अच्छा, मतलब ताली बजवाने के लिए आपने पूछा, ये तो हमारा उद्देश्य था ही नहीं। मेरा तो उद्देश्य यह है, आप लोगों को बहुत गंभीरता के साथ सोचना चाहिए। आप सोचेंगे, आपके मित्र सोचेंगे, उनको भी आप बात कर दीजिए। इसके बारे में सोचना पड़ेगा अपने को, क्या हम मांस के व्यवसाय बने? नहीं करना चाहिए। कोई भी इतिहास में ऐसा नहीं पन्ना ही नहीं है, तो उस पन्ने को क्यों जोड़ने का प्रयास किया जा रहा आज? और आगे भी इसी प्रकार होगा तो क्या होगा इस भारत का? ऐसा मत करो। पशुओं के संरक्षण के लिए कहा गया है, और आपसे वो क्या संरक्षण पाएंगे? इधर एक तरफ तो सिंह है और चीते हैं और वन्य पशु हैं, उनके लिए अभयारण्य कर रहे हैं, और यहाँ पर गली में रहने वाले जो पशु हैं, पक्षी हैं, उनके लिए भयारण्य कर रहे हैं। वहां पर वो तो अभय और यहां पर भयभीत क्यों? आप लोगों के ऊपर विश्वास जो था, गाय भैंस बैल घोड़े हाथी इनका निकल चुका है। यह मनुष्य की खोपड़ी, ये कौन से युग की खोपड़ी, पता नहीं कभी भी यह प्रहार कर सकता है। सुनने में यह आता है कि यह कत्ल करना अनिवार्य इसलिए है कि जो बूढ़े होते हैं काम में नहीं आते और वह भारमय हो जाते हैं, किसान लोग इससे परेशान हो जाते हैं और इनको छोड़ देते हैं, इसलिए हम उनको करते हैं। यह गलत बात है, यह तो केवल ऐसा कहना है, किंतु जवान जवान पशुओं का मांस ही बाहर जाता है, हाई क्वालिटी का जाता है, उसको परीक्षित करके भेजा जाता है। वह कैसा जाता है? जलयान से नहीं जाता है, किंतु वायुयान से जाता है। बड़ी खूबी की बात, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके यान होते हैं, उनमें मांस का निर्यात हो रहा है, क्योंकि 24 घंटे के भीतर भीतर वहां तक पहुंचना चाहिए, नहीं तो उसमें परिवर्तन होने की संभावना। ताजा ताजा चाहिए, और टनों टन यह प्रतिदिन चला जाता है, प्रतिदिन लाखों के कत्ल आज प्रतिदिन होता है। एक वर्ष में कम से कम भी 5 करोड़ तक बड़े बड़े जानवरों का वध होता है, और उसके द्वारा जो मांस है वो निर्यात होता है। आप सोचिए, विचार करिए, अहिंसा की बात आप कर रहे हैं, दूर दूर से महाराज आए और आप कुछ बात हमारे लिए समझा दो, अहिंसा धर्म कहाँ रहेगा? उनके लिए नहीं कर रहे हैं, हमारा अहिंसा धर्म सजीव होना चाहिए, निर्जीव नहीं, प्लास्टिक का जीवन नहीं होना चाहिए। ध्यान रखो, वह फैक्ट होना चाहिए, हमारा जीवन अहिंसा से भरा हुआ होना चाहिए, दया करुणा का स्रोत होना चाहिए। सम्यक दर्शन के अंग में एक अनुकंपा है, इस अनुकंपा का अर्थ यह है, कष्टमय जीवन जो जी रहा उसके प्रति हमारा कलेजा कब जाए, हमारे भीतर में दिल जो है कि दिल जो धड़कन में अंतर आ जाए, अरे ये कैसे मैं देख सकता हूँ, ये कैसे मैं सुन सकता हूँ, और ये कैसे इस वातावरण में मैं रह सकता हूँ, आप कैसे रह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता, इतना भयावह दृश्य होता चला जा रहा। और ऐसे ऐसे यंत्र आज वैज्ञानिक बहुत अच्छी क्वालिटी की यंत्र आ रहे हैं, और एक एक दिन में 20,000 तक का बड़े बड़े जानवरों का वध कर सकते हैं। संख्या बढ़ती चली जा रही है, कोई सुनने वाला नहीं। सुनने में आता है नेता लोग यदि आ जाते हैं, क्योंकि भीड़ ज्यादा एकत्रित हो जाती है, तो वो लोग अपनी तरफ से चुनाव के अपेक्षा से आ जाते हैं, नहीं महाराज बिल्कुल अब आगे के लिए कोई भी कत्ल खाने नहीं खुलेगा, मतलब प्राचीन जैसे नहीं खुलेंगे, आधुनिक खुलेंगे। सुनते ही यही हो रहा, यहां पर नहीं खुलेंगे बाहर खुलेंगे, वहां पर नहीं खुलेंगे अन्यत्र खुलेंगे, यहां से निर्यात नहीं जाएगा लेकिन अन्यत्र दूसरे स्टेशन से जाएगा, जाए तो जा रहा। ये बंद करना हो तो एक रात में बंद किया जा सकता है, और यदि विचार में नहीं आए तो चतुर्थ संज्ञा ज्वरा पूरा, ये निश्चित बात है। आप लोगों के लिए और कोई साधन नहीं है जो अर्थ को उपार्जन करने का, जीव के वध करके ही उसके मांस निर्यात करके यदि चाहते हो तो पाप की कटरी तो एक दिन भरेगी अवश्य, और उसमें सामूहिक कत्ल होने के कारण सामूहिक ही प्रकोप हो सकता है। ऐसे तूफान एक मिनट के लिए भी पर्याप्त है। बंधुओं ध्यान रखना, अभी गत माह हमें जो गुजरात में तूफान आया था, वर्षों के बाद एक मिसाल था, और 70,000 टन वजन के जो स्टीमर है जो समुद्र के भीतर रहता है वो बाहर नहीं आ सकता, लेकिन ऐसे तूफान का वेग था वो 7-8 किलोमीटर जो भीतर था वह 7-8 किलोमीटर बाहर आ गया। उसको पुनः जल में पहुंचाना एक समस्या जैसे खड़ी हो गई। उसको देखने के लिए लोग जा रहे हैं। ध्यान रखो 250 किलोमीटर रफ्तार से वह तूफान था। ऐसा तूफान 2 मिनट के लिए आ जाए तो पता नहीं लगेगा कहां पर कौन आसामी है, और आने में देर नहीं लग सकता। सामूहिक पाप बढ़ेगा तो वह कहीं किनारे करे चले जा, किनारे कैसे, आप यदि किनारे होते तो किनारे कर ले, समूह में हैं आप, समर्थन डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते चले जा रहे। यह यदि बंद हो जाता तो सबसे बड़ा धर्म माना जाएगा। ये जैन धर्म से कोई मतलब नहीं, अहिंसा धर्म से मतलब है, जैनियों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप सुनने के लिए आए हैं इसलिए तो कह रहे। कोई भी हो व्यक्ति उसका यह धर्म है, वह यदि आस्तिकवादी है, खुदा का बंदा है, सम्यक दृष्टि है, तो उसके आंखों में नमी आना चाहिए। ज्योति बढ़ाने के लिए तो आपको चिंता है, वो ज्योति बढ़ा करके क्या देखोगे आप, बड़े बड़े जानवर कट रहे हैं उन आंखों में नहीं आ रहे हैं, तो कौन से मच्छर की टांग में ऑपरेशन करने जा रहे हो आप, मुझे समझ में नहीं आ। ये बड़े बड़े तो जो यहां मौत की घाट उतर रहे हैं और आपके निमित्त से उतर रहे हैं, उनका खून का उपयोग हो रहा है, उनके चमड़ी का उतर हो रहा है। ऐसे बछड़े जो 4 साल के नहीं है, 3 साल के नहीं, अभी सुनने में आया 4 माह से लेकर के 12-20 माह के भीतर वाले बछड़े ही इस काम में आ जाते हैं, कुछ अलग क्वालिटी का मांस चाहिए। ये क्या है, जीवन प्रारंभ नहीं है और उसको समाप्त किया जा रहा, और अपने ही मनोरंजन अपने ही कुछ खड्डे को भरने के लिए चतुस्संज्ञा झड़ा हुआ। यह भोजन की आवश्यकता सबको है, लेकिन दूसरे के जीवन को समाप्त करके भोजन करना ही ठीक नहीं। सुनते हैं भारतवर्ष में ऐसे छूटा यदि वनस्पति का फल है तो उसको अभी मत तोड़ो। बाजार में छोटी छोटी ककड़ी, तुरई, गिलकी, लौकी नहीं लेते, किंतु बड़े बड़े हो जाते हैं फिर बाद में तोड़ देते हैं। किसानों के यहाँ रिवाज है, क्योंकि छोटे छोटे में पड़ने से अलग फल मिलता है और बहुत घात होता है, ये ठीक नहीं माना जाता, और आज छोटे छोटे बछड़ों के ऊपर वार हो रहा, ये बहुत सुनने में अच्छा नहीं लगता, वह विशेष रूप से होता। कलकत्ता से एक सज्जन आए थे, उन्होंने कहा महाराज इस प्रकार का कार्य वहां पर नियमित रूप से होता है, माता पिताओं को छुड़वा करके 4 महीने के बछड़े को और वहां पर भेजो तो क्या होता होगा माँ को और पिता को और देखने वालों को क्या होता होगा, लेकिन कुछ कर भी तो नहीं सकते। ऐसे ऐसे यंत्र हैं और प्रतिदिन होम होता जाता है, फिर भी आप लोग उस होम के सामने देख रहे हैं। एक वह युग था जिस समय कोई यज्ञ होता उसमें पशुओं को डाले जाते हैं तो नहीं है, कभी भी संभव नहीं। आज पशु बलि तो प्राय करके भारत में से निकल गई है, लेकिन यह पशु बलि का बाबा है, ये एक साथ इतना घूमा जाता और यह व्यवसाय और उन्नति के नाम पर होता है। अच्छा लग रहा है तो आप सुन लीजिए, यदि बुरा लग रहा है तो बुरे को तो समाप्त कर लेना चाहिए। जब तक आप समाप्त नहीं करेंगे तब तक यह सिद्ध होता है आपको बुरा नहीं लग रहा, महाराज ऐसा तो मत कहो लग तो रहा मैं बुरा, यदि बुरा लग रहा तो थोड़े बहुत तो प्रक्रिया होने चाहिए, वह प्रक्रिया जो हे की प्रक्रिया, हे का विज्ञान होने के उपरांत हे को छोड़ने की प्रक्रिया होती ही है, चाहे मन से भी हो होती है, वचन से भी आती है और काय के द्वारा भी आती है। अज्ञान दशा में मान लीजिए कि कोई खाने की चीज थी, खा ली, क्या हुआ उसमें विष है, तो क्या करेंगे, खा लिए ये ग्रास तो कोई बात नहीं, हाथ तो फेंक देंगे, हाथ में जो है लड्डू है उसको तो फेंक लेंगे, लेकिन मुंह में जो आया उसको कैसे फेंकेंगे, ऐसा सोचेंगे क्या, नहीं, कोई भी सामने व्यक्ति हो उसके ऊपर ही थूक दे, जल्दी निकल जाए बाहर, और ऐसी जीविका लेकर के उसको सारे सारे खकार करके निकाल देंगे, और फिर भी विश्वास नहीं होता तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे, डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी देख लो क्या हो गया, हमने अज्ञान दशा में खा लिया, अरे आपने ठीक नहीं किया, फिर क्या बात हो गया, अज्ञान दशा में कर लिया, इसमें तो अब विष व्याप्त हो गया, डॉक्टर साहब किसी भी प्रकार से जो आप चाहो, अब क्या चाहो, जो आप कहो, आपके हाथ में कलम दे देता हूं, जो आप लिख लो, चेक पर लिख दो, इतना चाहता हूं ले लो, मरना सन हो गया, निकाल दो। ये तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए जो अज्ञान दशा में जहर खाने का परिणाम हुआ, इसको निकालने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं हम, तो यदि बुरा समझते हैं तो क्या प्रतिदिन इतनी संख्या में वह आपको अच्छा लग रहा है, ज्यादा प्रवचन सुनाना और सुनना क्या मतलब रखता, मुझे तो समझ में नहीं आया, माइक अच्छे होने चाहिए, स्टेज मंच अच्छा होना चाहिए, पंडाल अच्छा होना चाहिए, अच्छे अच्छे व्यक्ति सुनने के लिए आना चाहिए, कैसेट बनना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए, वो होना चाहिए, फिर इसके उपरांत अखबारों में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इस प्रकार का प्रोग्राम हो गया, ये और खर्चिला हो गया, हिंसा को दूर करने में इसका क्या योगदान है, यह एक बात है। रचनात्मक कार्य तो यह है कि अपने को करना है, नहीं तो हम आपको जेल लिखते हुए यह भी तो भीतर से महसूस होना चाहिए, सम्यक दर्शन तभी जीवित रह सकता है कि हमारे तरफ से कोई क्रिया ही ना हो, तो कैसे सुरक्षित रह सकता है, अनुकंपा ही नहीं हमारे पास, दया ही नहीं हमारे पास, और तीज कहते होंगे ये लोग कितने निष्ठुर हो गए हैं, इनका ज्ञान बहुत समृद्ध हो गया, विकसित हो गया, और इनका विश्वास आत्मा के ऊपर बहुत हो गया, अजर अमर आत्म तत्व की बात तो करते हैं, लेकिन अपनी मौत की जब घड़ी आ जाती है उस समय में भी बहुत स्पेशल रूम में जाकर के 10-10 हजार 20-20 हजार खर्च करा करके, हमारे बचेंगे नहीं भैया, लेकिन 10 दिन और सही, ले लो ये 1 लाख रुपए, लेकिन हमें बचाओ, होता है कि नहीं भैया, होता है, आर्टिफिशियल है, प्राण वही दी जा रही है, वह उसमें कुछ है ही नहीं, और वह भी कब तक, जब तक फेफड़ों में स्पंदन है तब तक, फिर बाद में प्राण निकल ही जाएंगे, वायु भले ही वहीं पर रह जाएगी, प्राण वायु, प्राण निकल जाएंगे, यह जब तत्व की बात है, हमें दूसरे के साथ भी लागू कर देना चाहिए, अपने साथ रहने वाले पशु, उसके माध्यम से आपका जीवन कितना बड़ा बना हुआ, इसके बारे में थोड़े थीसिस लिख लेना चाहिए, कोई भी ऐसा जीव नहीं, जो मनुष्य नहीं, जो इन पशुओं के योगदान के बिना बड़ा बना हो, लेकिन अपना योगदान उनके लिए क्या है, देखा जाए तो एक भी पंक्ति लिखी नहीं जाएगी, यह हमारा इसके लिए काम आ गया, काम तो उसी से ले रहे हो, लेकिन फिर भी उनके जान भी लेने के लिए तैयार हो, यह मानवीयता नहीं मानी जाती, मानव का कर्तव्य है वे हमेशा हमेशा इन पशुओं के संरक्षण करते जाए, वो कभी भी परिग्रह का संचय नहीं करते, शनि ग्रह से वो कभी भी नहीं डरते, लेकिन आपको देखने से ही उनको भय लगने लगा है, 20वीं शताब्दी होने को उपरांत 21वीं शताब्दी में क्या होने वाला मैं नहीं कह सकता, ऊपर तो जा रहे हैं लेकिन नीचे रहने वाले व्यक्तियों का क्या प्रबंध है हमें समझ में नहीं आता। ऊपर जाकर के नीचे वालों के ऊपर बम पटकने की यह जो धारणाएं हैं, ये बहुत गलत धारणाएं शुरू हो रही हैं। इसके द्वारा चारों ओर भय व्याप्त हुआ है। आपका समय हो गया है 4:45। आप सावधान हो जाइए और 1 घंटा आपने लगातार सुना, इसके लिए भी तो मैं कम से कम धन्यवाद आपको दे देता हूँ। आपने बहुत बड़ा कष्ट किया है, लेकिन यदि इसके बारे में आप जाकर के सोचेंगे, हम तंदुर मच्छ है क्या महामच्छ है, यदि हम करुणा के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, तो हमारा जीवन पूरा का पूरा यूं ही आया हुआ यूं ही चला जाएगा। थोड़ी सी भी बरसात की बूंदे आ जाती हैं तो तहलका मच जाता है यहाँ पर, क्योंकि हमारा क्या होगा समझ में नहीं आता। उन पशुओं का क्या होगा उसके बारे में आप लोग कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। अहिंसा परमो धर्म।
तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, सारे जहां में हम तस्वीर लिए फिरते हैं, जैसे सूरज की किरणें कमल की पांखुरी को मुखरित कर देती है, वैसे ही गुरु की वाणी शिष्य के भीतर सोए हुए परमात्मा को जगा देती है। बिंदु से बिंदु और क्षुद्र से विराट तक की अंतर यात्रा में गुरु पथ के प्रदीप की तरह पथ प्रदर्शित करते हैं, तभी तो ऐसा लगता है।
भव्य जीवों को तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मनाने व समोसरण की दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। कालचक्र के प्रभाव से वर्तमान समय में हिंसा, अराजकता, अन्याय, भ्रष्टाचार जैसा दूषित वातावरण अंधकार रूप में व्याप्त है, किंतु हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरुवर रूप में ऐसे तेज सूर्य प्रकाश पुंज का सानिध्य प्राप्त है। ऐसे गुरु दर्शन मात्र से मन का कलुष मिट जाए, ऐसी गुरुवाणी जैसे दिव्य ध्वनि, ऐसे गुरु परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के परम शिष्य आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में सत सत वंदन। आचार्य श्री जी के प्रवचनों का संग्रह उपस्थित है। आचार्य श्री जी के प्रवचनों की सीडी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें ब्रह्मचारी जी श्री अजित वीर, श्री दिगंबर जैन उदासीन आश्रम इंदौर, दूरभाष 545744।
पतझड़ न रहे इसलिए बसंत चाहिए, पतझड़ न रहे इसलिए बसंत चाहिए, कुरीतियों का अब तो हमें अंत चाहिए। तंग घना अज्ञानता का छारना है घर, आज विद्यासागर जैसा संत चाहिए।